सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिण्णये जिणेणम्यूं वेयणमहाहियारं विविहियारं परूहेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता हैं पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ग्यारहवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना काल विधान की चर्चा चल रही है अपने। हम पृष्ठ संख्या 127 पर आ गए, 127। पहले हमने ज्ञानावरण की जघन्य वेदना काल की अपेक्षा किसके होती है यह बात देखी थी। तो क्षीण कषाय के गुणस्थान के अंत समय वाला जो अंतिम एक निषेक खिरेगा, तो उसका भी उदय है, चल रहा है, तो उसकी सत्ता एक समय वाली है, तो वहां जघन्य स्थिति कही। फिर किसी के दो समय, किसी के तीन समय, किसी के अधिक समय, इस तरह से जो क्षीण कषाय के शुरू में स्थिति कांडक घात कर रहा है उसको भी लिया वहां पर। और फिर बादर एकेंद्रीय जीवों की भी बात ली उन्होंने। तो ऐसी बढ़ती हुई स्थिति के अलग 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 यहां विकल्प बता रहे हैं। उसमें हमने देखा था उसमें जो भागहार होता है, यानी कितनी भाग वृद्धि होती है, बढ़ता तो एक एक समय है, परंतु शुरू में हम उसको असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे, क्योंकि कितने समय पहले एक समय था, यानी मूल में वो कितनी बढ़ती है उसको हमने देखी थी उस तरह से। अब यहां देखते हैं अभी हम 127 पृष्ठ पर। पुनः दूसरा जीव, चौथी लाइन, स्थिति घात को करता हुआ उत्तरोत्तर एक एक समय अधिक स्थिति के साथ आया। ये बादर एकेंद्रीय जीवों की बात चल रही है। अधिक अधिक स्थिति वाला कैसे, तो अधिक स्थिति वाला घात करके कोई जीव उतनी स्थिति वाला हो गया, वह संख्यात भाग वृद्धि का अन्य स्थान होता है। पहले हमने असंख्यात भाग वृद्धि देखी थी, अभी संख्यात भाग वृद्धि की बात चल रही है। अब इसका छेद भागहार होता है, यानी पहले तो अपूर्णांक में अभी हो गया, छेद भागहार यानी अपूर्णांक, और समभागहार यानी पूर्णांक। यथा ऊपर के एक अंक के प्रति प्राप्त राशि का विरलन करके, हमने जैसा देखा तब संख्यात भाग वृद्धि होती है ना, तो जो पूरी राशि है पहले ये, तो उसको हमने कितने में भाग कर दिया है, तो उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर दिया, उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसमें से एक खंड का फिर नीचे विरलन किया, और उसमें से एक एक हम दे देते हैं, उतनी संख्या फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते, तो हर एक के प्रति एक एक आता है, वो ऊपर हम फिर मिला देते हैं। तो यहाँ संख्यात भाग वृद्धि की बात आ रही है। तो जो नया भागार होगा वो छेद भागार होगा। हमने देखा था ना, ध्रुव स्थिति को विशिष्ट संख्या से भाग दे रहे हैं हम। ध्रुव स्थिति तो असंख्यात में है, उसमें एक एक बढ़ा देते हैं, तो कितने गुणा करना उसको। जैसे हमने कल देखे ना, शुरू कहाँ से किया था, ध्रुव स्थिति को ध्रुव स्थिति से भाग दिया, तो उसका प्रमाण एक आया। देखो ध्रुव स्थिति यानी मिनिमम वो स्थिति, उसके लिए जो कोई ध्रुव स्थिति है उसको ध्रुव स्थिति से भाग देते हैं तो संख्या एक आते हैं। अब मान लेते यहां दो परमाणु बढ़े, तब यहां क्या भागार कितना होगा, आधा हो जाएगा,
ध्रुव स्थिति का आधा। यहाँ मान लेते 20 गुना होगा तो ध्रुव स्थिति का 20वां भाग होगा।
इस तरह से उन्होंने घटाते घटाते पल्ले तक लाया था, यहाँ पल्ले तक लाई थी संख्या।
तो यहाँ विशिष्ट बात होती है तो यहाँ भागार पल्ले आया था,
फिर उससे भी दो गुना होता है तो पल्ले का भी आधा भाग किया, फिर उसका चौथा भाग किया, उसका असंख्यातवा भाग किया। इस तरह से बढ़ा तो एक एक से बढ़ा है, परंतु अभी टोटल कितना बढ़ा है तो असंख्यातवा भाग बढ़ा है, या फिर कहेंगे संख्यातवा भाग बढ़ गया। एट ए टाइम एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए हमने एक एक समय से बढ़ते हुए देख रहे, परंतु अभी तक कितना बढ़ा है ध्रुव स्थिति से आगे, तो उसको कहते इतना बढ़ा। तो अभी हम संख्यात भाग वृद्धि तक आ गए हैं, तो उसके लिए भागहार जो है, कल हमने उसको 15 है उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट संख्या से भाग दे रहे हैं, समझ लेते हैं। तो जो संख्या आएगी उतनी ही बढ़ोतरी होगी, तो हम कहेंगे वो संख्यात भाग वृद्धि होगी। अब 15 से 14 करेंगे भागहार, तो यहाँ बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत एक बड़ा समय, अनेक समयों बढ़ जाएंगे एक साथ, परंतु हमको एक ही समय बढ़ाना है, तो 14 पूर्णांक समथिंग भागहार लेना पड़ेगा। पूरा 14 लेते हैं तो बहुत समय एक साथ एकदम बढ़ते हैं, हमको एक एक समय बढ़ते हुए चाहिए। तो बीच वाले जितने भागहार हो गए उसको कहेंगे छेद भागहार। जब पूरा एक कम होगा भागहार में से, 15 का 14 हो जाएगा, तब हम कहेंगे वो सम भागहार, पूरा एक उसमें से कम हो गया। तो यहाँ ये छेद भागहार की बात बता रहे हैं। देखो, यथा ऊपर के एक अंक के प्रति प्राप्त राशि का विरलन करके उसे ही समखंड कर देने पर, मान लेते उसके ऊपर के प्रत्येक राशि में जो विरलन किया है और उसमें हमने बाढ़ दिया है, उसमें मान लेते कुछ 50-50 आए, तो वो 50 का विरलन करेंगे और 50 को ही समखंड करेंगे, तो हरेक के प्रति एक एक आएगा। 50 में 50 डिस्ट्रीब्यूट किए तो हर एक के प्रति एक आया, तो एक एक अंक के प्रति एक एक समय प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इसमें से एक अंक के ऊपर रखी हुई राशि को ग्रहण कर उसे उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त राशि में देकर, ऊपर अभी 50-50 था और यहाँ एक एक आया है, अब ये एक है वो 50 में मिला दो, क्योंकि अभी हमको 50 के बाद 51 समय वाली बात चाहिए, तो इसमें से एक एक हमने ऊपर दे दिया। ऊपरी एक अंक के प्रति प्राप्त राशि में देकर समकरण करते हुए एक अधिक अधस्तन विरलन प्रमाण स्थान जाकर, चूंकि एक रूप की हानि होती है, ये समकरण अभी समान करना उसको, यहां से एक एक उठा के हमने ऊपर दे दिया तो 51 स्थान जाते हैं, एक अधिक स्थान जाते हैं तो एक की हानि होती है। तो यहाँ जितने स्थान हो गए उतने स्थान में कितने की हानि होगी, इस तरह से उसका त्रैराशिक करना है। जितनी होगी ना हानि वो मूल भागहार में से कम करना है, तो ही अपूर्णांकों में यानी छेद भागहार की संख्या आएगी, नया भागहार का प्रमाण आएगा। सब जगह यही मेथड है। देखो, एक अधिक अधस्तन विरलन प्रमाण स्थान जाकर, चूंकि एक रूप की हानि होती, एक रूप यानी एक संख्या एक अंक, अतः एक अधिक अधस्तन विरलन का उपरिम विरलन में भाग देने पर एक रूप का असंख्यातवा भाग प्राप्त होता है। ये उन्होंने डायरेक्ट बताया, इतने अधस्तन विरलन में एक रूप की हानि, तो उपरिम विरलन में कितनी हानि, तो उपरिम विरलन डिवाइडेड बाय नीचे का विरलन, तो संख्या आएगी कितने रूपों की हानि होगी, तो वो होता है एक का असंख्यातवा भाग, वो मूल भागहार में से उसको घटा देना। इसको ये जो एक का असंख्यातवा भाग आया, इसको समान खंड करके दो रूपों में से घटा देने पर एक रूप का असंख्यात बहुभाग और एक पूर्ण रूप भागहार होता है। पहले हमने देखा था उसके दो अंक प्रमाण भागहार आया था, ऊपर देखो ये दो में से क्यों कम करना, क्योंकि अपना भागहार दो था। यहाँ बढ़ते देखो, पहले तीन लाइन दोबारा फिरते पढ़ते हैं देखो। फिर इसका बादर एकेंद्रीय की ध्रुव स्थिति में भाग देने पर संख्यात भाग वृद्धि के समय प्राप्त होते हैं। संख्यातवा भाग कब प्राप्त होगा, मिनिमम संख्या दो, तो संख्यात भाग वृद्धि का स्थान होता है। तो ऐसा इस प्रकार छेद भागार और समभागार, कभी अपूर्णांकों में कभी पूर्णांकों में स्थिति घात का आश्रय करके ध्रुव स्थिति भागार के दो अंक प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। हमने स्टार्ट कहाँ से कर किया था, ध्रुव स्थिति डिवाइडेड बाय ध्रुव स्थिति, फिर उसमें हमने जगन्य असंख्यात का भाग दिया था, फिर हम नीचे आए थे पल्ले का भी दिया था, ऐसे करते 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 उत्कृष्ट संख्यात का भी किया, संख्यात को भी घटाते 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 अभी कहाँ तक आए, ध्रुव स्थिति डिवाइडेड बाय दो, अभी ऊपर जो देखा था। उसके बाद दो में से भी अभी कुछ घटाना है, कितना, एक का असंख्यात भाग। इस तरह से वो सारे ही यानी वन पूर्णांक जो कुछ असंख्यात बहुभाग है एक में से, तो वो भागहार होगा। तो इस तरह से उसको घटाते चले जाएंगे, ये सारे छेद भागहार होंगे। इसलिए यहाँ दो में से कम किया। दो में से क्यों कम किया, क्योंकि पहले तो हमने जो वहां था भागहार हम 15 में से कम करते थे, घटाते 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 ये मिनिमम संख्या दो थी, उसमें से भी घटाने लगे। देखो इसको समान खंड करके दो रूपों में से घटा देने पर एक रूप का असंख्यात बहुभाग और एक पूर्ण रूप भागार होता है। यानी भागार कितना होगा, वन पूर्णांक, एक पूर्णांक कुछ, अपूर्णांकों में जो कुछ राशि आएगी। फिर इससे बादर ध्रुव स्थिति को अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उतना बढ़ाने पर संख्यात भाग वृद्धि का अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। ये अभी अभी जितने अभी समय बढ़े हैं वो कितना कहेंगे, अभी उसको भी अभी हम संख्यात भाग वृद्धि ही कहेंगे, क्योंकि अभी गुणा में नहीं हुआ है ना, वो डबल होगा तो कहेंगे संख्यात गुणा वृद्धि। अभी उसके पहले के बीच वाले जो अवक्तव्य स्थान है, दो का भागहार से भी नीचे भागहार आ गया है, फिर भी अभी दो गुणा नहीं हो गए, वो ध्रुव स्थिति की ध्रुव स्थिति इतनी अधिक नहीं हुई है, तब होगी, तब हम कहेंगे दो गुणा यानी संख्यात गुणा कहेंगे। बीच वाले जितने स्थान है उसको संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। अभी एक एक समय बढ़ते हुए ना, इसलिए उसको अपुनरुक्त स्थान कहें। एक एक समय से बढ़ते हुए अलग अलग विकल्प अलग अलग स्थान हम देख रहे हैं। मूल जितनी स्थिति थी उसके कंपैरिजन में ये कितना भाग है, तो अभी ये संख्यात भाग वृद्धि चल रही है। पुनः दो समय अधिक बढ़ने पर भी, यानी एक समय बढ़ने पर संख्यात भाग वृद्धि थी, दो समय बढ़े तो भी क्या, संख्यात भाग वृद्धि का ही स्थान होता है। इसका भी छेद भागहार होता है, ये भी अपूर्णांक संख्या है भागहार के। इस क्रम से छेद भागहार तब तक जाता है जब तक बादर एकेंद्रीय ध्रुव स्थिति को दो रूपों से खंडित करके उसमें से एक खंड को एक कम करके पुनः जो प्राप्त हो उसमें से एक कम करने पर प्राप्त राशि प्रमाण वृद्धि नहीं हो जाती। पूर्ण लब्ध प्रमाण वृद्धि के होने पर समभागहार होता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, देखो जरा ऊपर से भी टैली करेंगे, ऊपर से मिलता है कि नहीं। एदेन कमेन छेद भागहारो ताव गच्छदि, यानी वो छेद भागहार कब तक होगा, जब तक पूर्णांक में संख्या नहीं आएगी तब तक। जाव बादर ध्रुव ठिदिम दो ही रूवे ही खंडिदुन पुनो तथ एक खंडम ऋणम लद्ध ऋणमेतम वड्डिदम्ति। क्या कहते हैं कि कब तक चाना, तो बादर ध्रुव स्थिति जो है उसको दो रूपों से खंडित किया था हमने, ध्रुव स्थिति डिवाइडेड बाय टू यानी आधा हो गया ना था उसका, हाँ, उसमें से एक खंड को, उसमें से एक खंड को अगर उतनी होती है तो वो तो पूर्णांक में आएगा, परंतु उसमें एक समय कम लेना, एक समय कम तक लेना, एक खंडम ऋण का ना, एक खंड को एक कम करके जो प्राप्त हो फिर उसमें से एक कम ही नहीं करने, लद्ध ऋण में तुम, अच्छा लद्ध में से फिर एक कम करने पर,
एक खंड को एक कम करके, हाँ पुनः उसमें से और एक कम करने पर जो प्राप्त राशि प्रमाण वृद्धि नहीं होती, तब तक तो छेद भाग हो रहा, तब तक छेद भाग होगा। और पूर्ण लब्ध प्रमाण वृद्धि के होने पर, यानी जब लब्ध जो है वो तो जिसको हम कहते हैं बिना बाकी रखे पूर्ण भागार जावे, तो उसको कहेंगे सम भागार होता है। उसको अभी समझा रहे, यथा एक रूप का विरलन करके, अभी दो के बाद कौन सी संख्या है, एक है, तो एक रूप का विरलन करके उपरी में एक अंक के प्रति प्राप्त राशि को देकर समकरण करके एक अधिक अधस्तन विरलन का उपरी विरलन में भाग देने पर एक रूप प्राप्त होता है। एक ही लिया ना विरलन, उसको दो रूपों में से कम कर देने पर एक रूप भागहार होता है। पहले दो रूप था, उसमें से एक घटाया तो एक रूप रह गया। इससे अपवर्तित, अब ध्रुव स्थिति को एक से अपवर्तित कहेंगे तो ध्रुव स्थिति ही आएगी। इससे अपवर्तित बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति को उसकी ध्रुव स्थिति के ऊपर प्रक्षिप्त करने पर, पहले ध्रुव स्थिति थी, अब मिलाना कितना है उतना ही मिलाना, तो हुआ कितना, डबल। पहले बढ़ते 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 आधा था ना भागहार, आधा था, तो आधे के बाद एक 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 समय बढ़ता 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 जितनी ध्रुव स्थिति उतना बढ़ा। उसके एक समय कम तक क्या कहा हमने, संख्यात भाग वृद्धि। अब जितनी ध्रुव स्थिति है उतना ही और बढ़ गया, तो हम कहेंगे ध्रुव स्थिति दो गुना हो गई। हाँ, तो उसको संख्यात गुणा का प्रारंभ हो गया, वहां से दो गुणा यानी संख्यात गुणा कहेंगे हम, तो इसको कहते हैं ध्रुव स्थिति के ऊपर ध्रुव स्थिति को प्रक्षिप्त करना। करने पर संख्यात गुण वृद्धि का प्रारंभ होता है, स के ऊपर बिंदी लगाना। क्योंकि बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति को दो अंकों से गुणित करने पर उत्पन्न हुई है, ये जो अभी जो नया जो प्रमाण है काल का प्रमाण देख रहे ना, तो बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति से दो गुणा हुआ है। एक एक समय बढ़ते हुए अनेक विकल्प हमने देखे हैं, तो अब हम इसको कहेंगे संख्यात गुणा वृद्धि प्रारंभ हुई यहाँ से। इसके ऊपर उत्तरोत्तर एक समय की वृद्धि होने पर छेद गुणकार होता है। पहले छेद भागार होता था, अभी छेद गुणा, इतने गुणा अपूर्णांकों में गुणाकार हो जाएगा। अभी पहले दो गुणा, फिर और एक समय बढ़ा तो टू पॉइंट समथिंग गुणा करेंगे ना हम उसका, जितना कुछ होगा उतना। अब दो रूपों के ऊपर वृद्धि के निमित्तभूत प्रक्षेप को कहते हैं, प्रक्षेप यानी गुणा, गुणकार में कितना मिलाना उसको प्रक्षेप कहते हैं। यथा ध्रुव स्थिति प्रमाण वृद्धि के होने पर, वो ब दिख रहा है, वृद्धि दिख रहे, वृद्धि के होने पर यदि एक रूप गुणकार प्राप्त होता है तो एक समय की वृद्धि में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार ध्रुव स्थिति से एक रूप को अपवर्तित करने पर प्रक्षेप का, प्रक्षेप हुआ है, प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। देखो अभी समझ में आया कुछ, देखते हैं। मान लेते हम आसान फिगर ले लेंगे ना, पहले 100 समय मान लेते थे, मान लेते हैं ध्रुव स्थिति 100 समय है, तो 100 में 100 की ही वृद्धि हुई ना, तो कितना एक आया था रूप उसका, गुणकार एक रूप है। यहाँ क्या देखो, ध्रुव स्थिति प्रमाण वृद्धि होने पर एक रूप गुणकार प्राप्त होता है, डबल हुआ ना, एक उसमें प्रक्षेप हुआ है, तो अभी कितना बढ़ा, एक समय बढ़ा, तो एक समय बढ़ा तो कितना होगा, 1/100, यानी ध्रुव स्थिति से एक को अपवर्तित करना है। ध्रुव स्थिति में जितने समय है उससे एक को भाग देना, और पहले एक था उसमें वो मिलाना,
देखो यहाँ फिर उन्होंने संदृष्टि दी है लगती है। देखो यहाँ संदृष्टि में ध्रुव स्थिति के लिए चार अंक है, इसका गुणकार इतना है। नौ बाय चार, इससे बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर एक अधिक दूनी वृद्धि का स्थान होता है। चार को नौ चतुर्थांश से गुणा करते हैं तो नौ आते हैं। वो कैसे आ गए? चार गुना दो पहले हुआ था ना, चार ध्रुव स्थिति डबल हुई थी और उसमें एक समय बढ़ा तो नौ आ गए। दो समय अधिक वृद्धि होने पर भी छेद गुणकार होता है। दो समय बढ़ेंगे तो भी छेद, क्योंकि जब भी दो गुना से तीन गुना, जैसे सौ है तो सौ से दो सौ हो गए, दो गुना हो गए। अब तीन दो सौ ना, अभी सौ से तीन सौ हो गए तब तीन गुना हो जाएंगे पूर्णांक। तो बीच वाले 201 से लेके 299 तक जो है वो कितने गुना है? तो 2 पॉइंट समथिंग गुना है अपूर्णांकों में, छेद गुणकार कहेंगे उसको। देखो दो समय अधिक वृद्धि के होने पर भी छेद गुणकार होता है, यानी 200 से 201 हुए, 202 हुए, 203 हुए, वो सारे छेद गुणकार होंगे। यहां पहले के समान ही त्रैराशिक क्रम से छेद गुणकार को सिद्ध करना चाहिए। उसका प्रमाण यह है, ये पांच द्वितीयांश, यानी चार को पांच द्वितीयांश से गुणा करेंगे तो दस संख्या आएगी। यानी पहले हमने ध्रुव स्थिति कितनी देखी थी? चार, डबल होती है तो आठ, उसमें एक समय बढ़ा तो नौ, दो समय बढ़ा तो दस, तो वहां गुणकार कितना हो गया? पांच द्वितीयांश। इससे बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर दो समय अधिक दुगुनी वृद्धि होती है। दुगुनी वृद्धि आठ हुई, उसमें दो समय अधिक हो गए, उसके लिए गुणकार का प्रमाण पांच द्वितीयांश आ गया। यही लिखा है, चार गुना पांच द्वितीयांश इज इक्वल टू दस। वो ध्रुव स्थिति चार डबल हुई, चार दुनिया आठ और उसमें दो मिलाए। इस क्रम से छेद गुणकार होकर तब तक जाता है जब तक कि अन्य एक अंक से कम ध्रुव स्थिति प्रमाण वृद्धि नहीं हो जाती। अभी हमने देखा था 100 को हमने मान लिया था ध्रुव स्थिति, दो गुणी यानी 200 और तीन गुणी यानी 300। तो ये छेद गुणकार, छेद गुणकार यानी अपूर्णांकों में गुणकार। दो ये पूर्णांक है, फिर तीन ये पूर्णांक होगा और बीच में एक एक समय बढ़ गया है 201 202, उसके लिए गुणकार कितना होगा? तो अपूर्णांकों में होगा, तो 299 तक छेद गुणकार होगा। जब 300 हो जाएगी समय तो उसको हम कहेंगे वो तो सम गुणकार हो गया, यानी तीन गुणा, एक संख्या उसमें बढ़ गई। इस क्रम से छेद गुणकार होकर तब तक जाता है जब तक कि अन्य एक अंक से कम ध्रुव स्थिति प्रमाण वृद्धि नहीं होती। यानी ध्रुव स्थिति एक बार बढ़ी, ध्रुव स्थिति दो बार बढ़ी, ध्रुव स्थिति तीन बार बढ़ी, ऐसे ना, तो ध्रुव स्थिति दो गुना हुई, तीन गुना हुई, ऐसा कहेंगे हम। और बीच वाले अंकों के लिए छेद गुणकार कहेंगे। पश्चात संपूर्ण ध्रुव स्थिति प्रमाण वृद्धि हो जाने पर त्रिगुणी वृद्धि होती है। हमने अभी चार समझ लिया था यहाँ पर पुस्तक में, तो चार से आठ हुआ तो दुगुनी वृद्धि, बारह हो गया तो त्रिगुणी वृद्धि। कारण यह है कि बादर एकेंद्रीय की ध्रुव स्थिति प्रमाण समयों के यदि एक गुणकार शलाका पाई जाती है तो बादर ध्रुव स्थिति में कितनी गुणकार शलाकाएं प्राप्त होगी? इस प्रकार फलगुणित इच्छा में प्रमाण राशि का भाग देने पर एक गुणकार शलाका पाई जाती है। जब ध्रुव स्थिति बढ़ती है तो गुणकार शलाका एक एक से बढ़ेंगे। इस शलाका को दो रूपों में मिलाकर, क्योंकि अभी मिनिमम संख्या दो था, उसमें जब एक एक ध्रुव स्थिति प्रमाण समय बढ़ेंगे तब दो का गुणकार तीन हो जाएगा, फिर चार होगा। जब जब एक एक ध्रुव स्थिति प्रमाण समय बढ़ेंगे तब तक उसको गुणकार का एक छेद से वो पूर्ण सम गुणकार हो जाएगा, दो तीन चार पाँच छः, इस क्रम से बढ़ेगा गुणकार। एक गुणकार शलाका पाई जाती है। ये हम छठी लाइन में आए 129 पेज पर, छठी लाइन अभी पढ़ रहे हैं। इस शलाका को दो रूपों में मिलाकर उससे बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर त्रिगुणीय वृद्धि होती है। उसका प्रमाण यह है, पहले दो गुणकार था उसमें एक मिलाया तीन हुआ, उससे ध्रुव स्थिति चार को गुणित किया तो 12 आ गए। इसके ऊपर एक समय अधिक बढ़ने पर छेद गुणकार होता है, यानी अपूर्णांकों में गुणकार बढ़ता है। यथा ध्रुव स्थिति प्रमाण समयों का यदि एक अंक गुणकार प्राप्त होता है, जब जब ध्रुव स्थिति प्रमाण बढ़ेगे, ध्रुव स्थिति में जितने समय है एक एक समय बढ़ते हुए ध्रुव स्थिति समान बढ़ोतरी हो जाएगी, तब गुणकार में एक बढ़ेगा, दो का गुणकार तीन हो जाएगा, फिर चार होगा, फिर पांच होगा, इसे लाखों उत्कृष्ट संख्या तक बढ़ सकेंगे ना, तब तक संख्यात गुणा वृद्धि कहेंगे हम उसको। एक अंक गुणकार प्राप्त होता है तो एक समय का कितना गुणकार प्राप्त होता है, तो एक समय का तो एक डिवाइडेड बाय ध्रुव स्थिति असंख्यात। हाँ नहीं, संख्यात गुणा वृद्धि, पहले तो दो गुणा वृद्धि हो रही थी। एक एक से बढ़ते हुए उसको भी संख्यात गुणा वृद्धि कहेंगे। दो गुणा से ज्यादा है ना, टोटल लेना है, बढ़ता एक एक समय से है। हाँ स्थानों की संख्या, हाँ तो स्थान भी उतने ही होगी जितने ध्रुव, हाँ स्थानों के नंबर ऑफ स्थान आप पूछ रहे, हाँ वृद्धि का प्रमाण नहीं पूछ रहे, हाँ तो स्थान असंख्यात होगी जितने ध्रुव स्थिति में समय है, हाँ उतने स्थान होंगे वहां पर। अब ऐसे कितनी बार बढ़ेंगे, ऐसे ना एक एक समय से बढ़ते हुए अलग अलग वेरिएशन हम देख रहे हैं। देखो ये यथा के आगे पूछ पढ़ते हम, ऊपर से आठवीं लाइन हो गई नौवीं। ध्रुव स्थिति प्रमाण समयों का यदि एक अंक गुणकार प्राप्त होता है, जब जब ध्रुव स्थिति प्रमाण बढ़ते हैं तब गुणकार में एक एक की बढ़ोतरी होती है, तो एक समय का कितना गुणकार प्राप्त होगा। ध्रुव स्थिति प्रमाण बढ़ते तो एक गुणकार एक से बढ़ता है, तो जब एक ही समय बढ़ेगा तो कितना होगा, एक को ध्रुव स्थिति से भाग देंगे उतना होगा, यानी एक का संख्यात भाग आ गया ना वो। इस प्रकार फलगुणित इच्छा में प्रमाण राशि का भाग देने पर एक रूप का असंख्यात भाग आता है। जैसे एक है, एक बढ़ोतरी होती है, उसको डिवाइडेड बाय, हाँ एक समय को ध्रुव स्थिति चार से भाग दिया यहाँ पर, तो एक चतुर्थांश, चार को हमने असंख्यात मान लिया ध्रुव स्थिति जितना, इसको तीन रूपों में मिलाने पर इतना होता है। पहले तीन गुणकार आया था ना, तीन के आगे एक समय बढ़ेंगे तो गुणकार कितना हो जाएगा, तो 13 चतुर्थांश, क्योंकि तीन में एक चतुर्थांश को मिला दिया। मूल में क्या होगा, तीन में एक का असंख्यात भाग मिला देना, यानी तीन प्लस एक डिवाइडेड बाय ध्रुव स्थिति। वो ध्रुव स्थिति असंख्यात का प्रमाण क्या है, ध्रुव स्थिति, बादर एकेंद्री की ध्रुव स्थिति। तो तीन का चार होने में बीच में कितने स्थान जाएंगे, आपका प्रश्न जो था ना, ध्रुव स्थिति प्रमाण स्थान बीच में चले जाएंगे, तब तीन गुना था वो चार गुना हो जाएगा। हाँ इतने डिफरेंस छेद भागार बीच में हो गए, उसमें से एक माइनस कर दो। इसके द्वारा बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर एक समय अधिक त्रिगुणी वृद्धि का स्थान होता है। अब ये हमने तीन प्लस एक चतुर्थांश 13 चतुर्थांश आया था, 13 चतुर्थांश को से ध्रुव स्थिति चार को गुणा करेंगे तो 13 वाला स्थान आएगा, तो त्रिगुणा ने चार त्रिक 12 और प्लस एक समय 13 हो गए। पश्चात दो समय अधिक वृद्धि के होने पर छेद गुणकार होता है। अब छेद से सम गुणकार कब होगा, जब तीन से चार गुणा हो, एक पूरा अंक बढ़ेगा तब। यहाँ गुणकार को उत्पन्न कराते समय पूर्व अंश को दुगुणित कर उसे तीन रूपों में मिलाना चाहिए। यानी एक चतुर्थांश आया था, एक समय के बढ़ने पर एक चतुर्थांश बढ़ता है, दो समय के बढ़ने पर उसको दुगुना करो, दो चतुर्थांश बढ़ेंगे गुणकार में। तीन समय अधिक बढ़ने पर छेद गुणकार होता है, यहाँ पूर्व के अंश को तीन से गुणित करना चाहिए, एक चतुर्थांश को तिगुणा करेंगे। इस प्रकार छेद गुणकार होकर तब तक जाता है जब तक कि पूर्व का अंश एक कम ध्रुव तिथि से गुणित होकर तीन रूपों में प्रक्षिप्त नहीं हो जाता। यानी अभी यहाँ उतना ही लेना ना, एक कम ध्रुव तिथि यानी तीन, हाँ तीन चतुर्थांश ही लेना है। फिर यहाँ भी पूर्व के अंश को पूर्ण ध्रुव तिथि से गुणित कर तीन रूपों में मिला देने पर गुणकार चार अंक होते हैं, यानी उसमें और एक समय मिले तो गुणकार चार हो जाएगा, गुणकार बढ़ेगा। उससे ध्रुव स्थिति तो गुणित करने पर चौगुणी वृद्धि होती है, चार चौक 16 हो जाएंगे। इस प्रकार छेद गुणकार और सम गुणकार के क्रम से बंधव सत्व का आश्रय करके संगी पंचेंद्रिय जीव की ध्रुव स्थिति तक ले जाना चाहिए। क्या कहते हैं, कभी बंध का और कभी सत्व का आश्रय। पहले बंध का लिया था, फिर सत्ता की सत्व का आश्रय लेकर, क्योंकि स्थिति के अन्य अन्य विकल्प हमको देखने हैं। अपुनरुक्त है, हाँ अलग अलग जीवों की अपेक्षा पुनरुक्त हो सकते हैं, परंतु और ये भी अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा अन्य अपुनरुक्त भी देखे हमने। यानी यही इतनी ही स्थिति अन्य किसी के भी संभवती है। तो बंध और सत्व दोनों की अपेक्षा से ही अलग अलग स्थान देखे हमने, कहीं बंध को लेना कहीं सत्व को लेना। तो ये कहाँ तक ले जाना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय जीव की ध्रुव स्थिति तक ले जाना चाहिए। हमने उत्कृष्ट से हम उतरते उतरते संगी पंचेंद्रिय की ध्रुव स्थिति तक आए थे, वहां हमने 31 मान लिया था। अब यहाँ बादर एकेंद्रिय की ध्रुव स्थिति उन्होंने 4 मान ली है संदृष्टि में, तो बढ़ाते बढ़ाते वहां तक, अभी हमने देखा 4 चौक 16 हो जाएगी, 4 5 20 हो जाएगी, इससे बढ़ते बढ़ते संगी पंचेंद्रिय की ध्रुव स्थिति तक बढ़ाना चाहिए। उसका प्रमाण संदृष्टि में 28 है, अभी वहां यहाँ पर उन्होंने 28 मान लिए, क्योंकि 4 7 हो गए ना, वो 28 हो जाते हैं उसको समझाने के लिए। फिर इसके ऊपर एक समय की वृद्धि होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, यानी एक एक समय से बढ़ते हुए हमको स्थान देखने हैं। उसके गुणकार का प्रमाण यह है 7 पूर्णांक 1/4, क्योंकि अभी गुणकार बढ़ेगा ना पूर्णांकों में। इससे ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर संगी पंचेंद्रिय जीव की एक समय से अधिक ध्रुव स्थिति का स्थान होता है 29 वाला, 28 उसकी ध्रुव स्थिति है, अभी उसका स्थान हो गया 29। इस प्रकार छेद गुणकार और समगुणकार स्वरूप से बादर ध्रुव स्थिति में एक कम उत्कृष्ट गुणकार शलाकाओं के प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिए। बादर ध्रुव स्थिति से हम कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ तक हम उसको कहेंगे संख्यात गुणा, उत्कृष्ट संख्यात से गुणा करने तक हम उसको संख्यात गुणा कहेंगे। अब उसमें एक कम रखा उन्होंने के कहाँ तक, एक कम उत्कृष्ट गुणकार शलाकाओं के प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिए, यह अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। ये उन्होंने 228 तक ले गए। इसके ऊपर एक समय अधिक बढ़ करके बंद होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, इसका छेद गुणकार होता है, अपूर्णांकों में है ना, ये छेद गुणकार होता है। यथा बादर ध्रुव स्थिति प्रमाण समयों के बढ़ने पर यदि एक गुणकार शलाका प्राप्त होती है तो एक समय के बढ़ने पर कितनी गुणकार शलाकाएं प्राप्त होती, ये पहले का ही गणित है। इस प्रकार फलगुणित इच्छा में प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध हो उसे पूर्व रूपों में मिलाने पर गुणकार होता है 57 पूर्णांक 1/4। देखो पहले 4 को 57 से गुणा करके 228 लाए थे, वहां तक लाए थे ना। अब 228 में और एक मिला तो ये छेद गुणकार हुआ, कितना? 57.14। क्योंकि एट अ टाइम एक एक से जब समय बढ़ता है तो एक चतुर्थांश गुणकार में वृद्धि होती है। इससे बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर सांप्रतिक स्थान होता है, यानी अभी जो हाल वाला प्रकृत जिसको कहते हैं सांप्रतिक, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कौन सा? 229 को 4 से डिवाइड किया गुणा 4, 229 आ जाए। ये 229 कहाँ से निकाले? ऊपर अभी 57.14 है, वही अभी जो गुणकार ऊपर बताया ना 57.14, उसको ही सॉल्व किया तो 229.24 हो गया। उसको ध्रुव स्थिति से उसका गुणा करना, इतने गुणा है तो कितने हो गए? 229 आ गए समय पश्चात। दो समय अधिक बढ़कर बंद होने पर, दो समय ने 228 में दो समय और बढ़ गए, 230 हो जाएंगे, तो ध्रुव स्थिति के कितने गुणा हो गए? तो 57.24। यह अपुनरुक्त स्थान है, यहाँ पूर्वोक्त अंश को दुगुणित करके, यानी एक चतुर्थांश है उसको दुगुणित करना तो 2/4 हो जाएंगे, समस्त रूपों में मिलाना चाहिए तो 2/4 ने 1/5, इसको पूर्व रूपों में मिलाने पर इतना होता है 57.125 हो जाता है। इससे बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर दो समय अधिक वृद्धि का स्थान होता है, ये 57.125 का ही अर्थ होता है 115/5। और उसको ध्रुव स्थिति 4 से गुणा करेंगे, प्रमाण 230 आ गए। तीन समय अधिक बढ़कर आए हुए जीव के अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, पूर्वोक्त अंश को तिगुणा करके, यानी 3/4 करना भी, पूर्वोक्त गुणकार रूपों के साथ मिलाने पर 57 में 3/4 मिला देना। इससे बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर इच्छित वृद्धि स्थान होता है। अभी 57.34 को ही उन्होंने सिंप्लीफाई किया तो 231/4 आते हैं, उसको 4 से गुणा करेंगे तो 231 आती है संख्या। इस प्रकार पूर्वोक्त अंश का गुणकार एक कम ध्रुव स्थिति के होने तक छेद गुणकार होकर जाता है। एक कम ध्रुव स्थिति के होने, अभी 3 तक तो छेद गुणकार होगा, जब 4 बढ़ेंगे ना, हाँ, तो 57 के बदले 58 यानी समगुणकार हो जाएगा उसका। पश्चात एक समय अधिक बढ़कर बंद होने पर समगुणकार होता है, उसका प्रमाण 58 है। इससे बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर, यानी 58 गुणा करना ना, 4 × 58 संख्यात गुणवृद्धि का अंतिम स्थान होता है। यानी यहाँ उन्होंने मान लिया उत्कृष्ट संख्या थे, उसके बाद क्या कहेंगे? हाँ, वह यह है 58 × 4 = 232। इस प्रकार बादर एकेंद्रीय जीव की ध्रुव स्थिति का आश्रय करके 3 वृद्धियों के द्वारा ज्ञानावरणी की अजगण्य स्थिति के स्वामित्व की प्ररूपणा की। 3 ही से लिए गुणा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उतना ही मान लिया था ना पहले 200। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। ये तो बादर एकेंद्री की अपेक्षा बताई। है पंचेंद्रियों में, परंतु उसकी कंपैरिजन बादर एकेंद्रियों को हमने बेस बनाया, 4 को हमने बेस बनाया, तो 238 ये 4 के कितने गुना है? तो 58 गुना हो गए ना। अलग अलग अपेक्षा से हम उसको कंपेयर करेंगे तो उसका प्रमाण अलग अलग होगा। अब जघन्य के साथ कंपेयर करेंगे तो जघन्य तो एक था तो देखो, परंतु जघन्य स्थिति का आश्रय करके, जघन्य स्थिति कितनी है? एक समय, तो एक में एक बढ़ेगा तो क्या होगा? संख्यात गुणा वृद्धि से स्थान, क्योंकि डबल हुआ, 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, तो जितने है बढ़ेंगे उतने गुना ही हो जाएंगे। तो जघन्य स्थिति का आश्रय करके, ख्याल आया क्या बताना चाहते?
एक में एक बड़ा तो दो गुना हो गया डायरेक्ट, वहां कुछ असंख्यात भाग वृद्धि वगैरह हम नहीं कह सकेंगे। जघन्य स्थिति एक समय है, उसमें और एक समय बढ़ेगा तो वो कहेंगे ये संख्यात गुना वृद्धि हुई। तो संख्यात गुना वृद्धि, और जब असंख्यात बढ़ेंगे तो कहेंगे असंख्यात गुना वृद्धि, ये दो ही वृद्धियां होती है। क्योंकि ओघ जघन्य स्थिति की अपेक्षा ओघ उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात गुणी पाई जाती है। जघन्य स्थिति एक समय की है और ओघ उत्कृष्ट स्थिति हमने देखी थी, ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है पता है ना आपको, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वो एक से कितने गुना है तो असंख्यात गुना है। 30 कोड़ा एक सागर में असंख्यात समय होते हैं, 30 कोड़ा कोड़ी में भी असंख्यात समय होते हैं, वो अनंत नहीं कहेंगे उसको। इस प्रकार संख्यात पल्योपमों से हीन 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मात्र ज्ञानावरणीय के अजघन्य स्थान भेदों की प्ररूपणा की है। या संख्यात पल्यो अजघन्य स्थान को यहाँ लिया, संख्यात पल्योपमों से हीन 30 कोड़ा कोड़ी सागर, अभी 30 कोड़ा कोड़ी को भी कहीं संख्यात पल्य ही लिखा है, क्योंकि 30 कोड़ा कोड़ी मल्टीप्लाइड बाय 10 कोड़ा कोड़ी वो भी संख्यात ही हो जाएगा ना, उसमें से कुछ पल्य और कम कर दो। बराबर है आपका, बीच में हमने देखा था ना अंतर सांतर स्थान होते हैं, सांतर कहाँ, एक शपक श्रेणी में भी सांतर स्थान देखे थे। अब जो है संगी पंचेंद्रिय के, जो असंगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय के बीच में भी कुछ स्थान ऐसे हो गए शायद, तो ये कुछ संख्यात पल्य कम करे, ये शपक श्रेणी में संख्यात पल्य कम किए उन्होंने, उसमें जो सांतर स्थान होते एक एक समय के बढ़ते हुए वहाँ स्थान नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ वो स्थिति कांडक घात की अपेक्षा हमने देखे थे, तो उसमें बीच बीच में संख्यात पल्य प्रमाण वहाँ हाँ, यानी संख्यात बार स्थिति कांडघात हुआ वहाँ पर, हजारों यानी संख्यात बार हुआ, और हर बार हाँ पल्य का जो कुछ भाग जितना है उतनी उतनी बादर के बाद तो कंटिन्यूस बढ़ाया है उन्होंने, परंतु ये जो संख्यात पल्य प्रमाण स्थान कम करना वो क्षपक श्रेणी वाले ही लेनी है, क्षपक श्रेणी की ही अपेक्षा लेना। देखो ये हमने बढ़ाते हुए कम करते हुए भी इसको देखा था, आपको देखना है, देखो ये जब हमने अनुत्कृष्ट स्थान देखे थे अनुत्कृष्ट लेख, हाँ ये आयु की बात है, उसके पहले ज्ञानावरण का अनुत्कृष्ट लेना है, हाँ देखो यहाँ 108 पृष्ठ, अभी हम कहाँ पढ़ा ये हमने 132, देखो यहाँ ऊपर का जो पैराग्राफ है उसमें नीचे से चौथी है, उसके भी ऊपर मुझे बताना है, चौथी से पढ़ेंगे। देखो सांतर स्थान संख्यात ही है, मिला 108 पृष्ठ ऊपर के पैराग्राफ में नीचे से चौथी लाइन, हम वहां अनुत्कृष्ट स्थान देखे थे एक समय कम होते होते देख रहे थे, वहां हमने देखा था कि स्थिति कांडक घात होते हैं क्षपक श्रेणी में, तो स्थिति कांडक घात होने के लिए मान लेते 4 समय लगते हैं, और स्थिति कांडक कितना बड़ा होगा मान लेते 50 समय का हुआ, तो क्या होगा 50 समय की स्थिति एकदम घटने वाली है, परंतु उसके लिए 4 समय लगेंगे। पहले समय में वो 50 निषेकों में से कुछ परमाणु नीचे आए, परंतु स्थिति उतनी ही रही, पहले जितनी थी उतनी ही, परंतु नीचे का एक निषेक गल गया, क्योंकि उदय एक एक समय का होता निकल जाता है, यानी एक समय घटा, दूसरा समय घटा, तीसरा समय घटा,
चौथे समय में वो चौथा समय भी घटा और ऊपर के 50 समय भी घटे, तो चार समयों तक तो लगातार एक एक समय घट रहा था, और चौथे समय में क्या हुआ, वो 50 समय एक साथ घट गए। तो ये बीच वाले जो स्थान हो गए, चार समय घट गए और एकदम 50 समय घट गए, बीच वाले स्थानों में कोई अन्य जीव उसका स्वामी नहीं है। तो वो जो पल्य का संख्यात्वा भाग प्रमाण स्थान जो है, उस स्थान के कोई स्वामी नहीं है। यहाँ देखो, तो स्थान्तर स्थान संख्यात ही है ऐसे, क्योंकि जितने बार स्थिति कांड घात होगा उतने स्थान्तर स्थान उतने बार स्थान्तर स्थान हो गए, यानी संख्यात हजार हो गए, क्योंकि सपक श्रेणी में संख्यात ही स्थिति कांडकों का विघटन पाया जाता है। संख्यात है ना, संख्यात हजार कहते हैं, हजारों भी कहेंगे तो ही उसकी संख्या संख्यात में ही है। तो कहते संख्यात पल्योपम प्रमाण स्थान यह नहीं पाए जाते, इतने स्थान यहाँ नहीं पाए जाते। अंतरों में एक एक समय से एक एक समय करते हुए, क्योंकि एट अ टाइम कांडक घात कितने का होता है, पल्य का संख्यात्वा भाग, और ऐसे कितने कांडक होते हैं तो संख्यात होते हैं, हजारों होते हैं, तो फिर भी वो उसका उसको भाग देंगे तो भी वो संख्यात पल्य इतनी संख्या आएगी उसके, तो इसके लिए वो रेफरेंस है। संख्यात पल्योपम से ही जो लिखा है ना, अब यहाँ हम 132 पृष्ठ पर आते हैं। एक शपक श्रेणी में जो स्थिति कांडक घात होते हैं उसकी अपेक्षा ये स्थान पाए ही नहीं जाते किसी जीव के, इसलिए इसको कम उतने ही माइनस किए हैं, बाकी एक एक समय से बाकी कंटिन्यूस बाकी सब स्थान है, इसीलिए अपुनरुक्त स्थान एक एक समय पर उन्होंने घटाए और ये बीच वाले तो छोड़ ही दिए हैं, यहाँ कोई अन्य जीव उसके साथ कंपेयर करने वाला है ही नहीं है। इतने स्थानों में कोई उतने समय वाला कोई किसी का स्थान होता ही नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं। हाँ, ज्ञानावरण की बात चल रही ना अभी। हाँ वही होगी। जगनिस्थान, हाँ देखो, इस प्रकार अभी हम 132 पृष्ठ पर तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं। इस प्रकार संख्यात पल्योपमों से हीन 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम मात्र ज्ञानावरणीय के अजघन्य स्थान भेदों की प्ररूपणा की है। अजघन्य किसको कहते हैं, जो उत्कृष्ट नहीं है वो अजघन्य। 30 कोड़ाकोड़ी सागर के एक समय कम, वहां से लेकर नीचे एक समय तक हमने देखा, बीच में जो कुछ शपक श्रेणी वाले बीच वाले स्थान जो है कांडकों वाले उतने छोड़कर, उसका प्रमाण होता है संख्यात पल्य। एवं दंशनावरणीय अंतरायणम, इसी प्रकार दर्शनावरणीय एवं अंतराय कर्मों की जघन्य व अजघन्य स्थिति के स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए। देखो तीन को ही लिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, बाकी को क्यों छोड़ा? हाँ, उसका जघन्य 10वें गुणस्थान में, यहाँ 12वें की गुणस्थान में लिया ना, ये एक बात, और बाकी अन्य जो आघाती है वो तो 14वें के अंत समय में ले लेंगे जघन्य के लिए। देखो, जैसे ज्ञानावरणीय कर्म की जघन्य व अजघन्य स्थिति के स्वामित्व की प्ररूपणा की है, वैसे ही दर्शनावरणीय और अंतराय की भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति भी 30 कोड़ाकोड़ी सागर की है तीनों कर्मों की, जघन्य एक समय, और उसका कहाँ होती है वो भी क्षीण कषाय के अंतिम समय में, इसकी अपेक्षा तो सब में समानता पाई जाती है, इसलिए तीनों की बात वैसे है। अब वेदनीय की बात करेंगे। सामित्तेन जहन्य पदे वेयनीय वेयना कालदो जहन्या कस, स्वामित्व से जघन्य पद में वेदनीय कर्म की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। ये उत्कृष्ट की बात हुई थी ना सबकी, देखो वहां क्या लिया था, आयु को छोड़कर जो सातो है उसकी उत्कृष्ट की बात की थी, सबके लिए समान। समान कैसे? उत्कृष्ट पद के स्वामी की अपेक्षा समान, परंतु उसकी स्थिति कितनी है, तो किसी के 70, किसी के 20, किसी के जो कुछ 30, ख्याल आया डिफरेंस। अभी जघन्य में उसको अलग किया, क्योंकि उसका जो गुणस्थान है वो अलग अलग गुणस्थान में उसको जघन्य पद प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, स्वामित्व से जघन्य पद में वेदनीय कर्म की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य किसके होती है। अब उसका उत्तर आगे के सूत्र में बता रहे हैं, अन्नदरस्य चरिम समय भवसिद्धियस्य तस्य वेयनीय वेयना कालदो जहन्ना। ये भवसिद्धि कहने अभी सिद्ध होने जा रहा है, चरिम समय भवसिद्धिक, जिसको हम भव्य सिद्धिक कहेंगे, चरिम समय ने इस संसार का अंतिम समय, अयोग केवली गुणस्थान का अंतिम समय। जो कोई जीव भव्य सिद्धि काल के अंतिम समय में स्थित है, भव्य सिद्धि का पहला समय कौन सा होगा? हाँ बोलो। हाँ, अनादि से ही वो भव्य सिद्धिक है, तो फिर अंतिम समय क्यों कहा? क्योंकि बाद में वो सिद्ध होने वाला है, फिर उसको भव्य नहीं कहेंगे, होने योग्य कब कहेंगे? जो सिद्ध होने वाला है उसको हम भव्य कहते, हम जिसको भव्य अभव्य कहते ना उसी को यहाँ भव्य सिद्धिक कहा है। सिद्धिक क्यों लगाया, कि क्या होने योग्य वो तो बताओ। हम कहेंगे भव्य डॉक्टर है, यानी डॉक्टर होने योग्य, कब तक कहेंगे? वो मेडिकल के जो अंतिम वो परीक्षा पास करने तक उसको कहेंगे भव्य। वैसे यहाँ भव्य सिद्धिक लिया, जो सिद्ध होने योग्य है उसका अंतिम समय ने, अगले समय में जो सिद्ध होने वाला है उसके अंतिम समय वाले को हम क्या कहेंगे? चरिम समय भव सिद्धिक, ऐसा लिखा है यहाँ पर। परंतु वो उसका पहला समय है ही नहीं, वो अनादि से भव्य है, ख्याल आता है? भव्य कहीं उत्पन्न नहीं है, बीच में से अभव्य में से टर्न होके भव्य होगा ऐसे में, वो तो अनादि से भव्य है। और यहाँ उसका अंतिम समय लिया है, क्योंकि एक समय वाली वेदनी है कि वेदना लेनी है हमको। देखो नहीं, वो प्रूव होने के लिए सिद्धिक नहीं कहा उसको। जो कोई जीव भव्य सिद्धि काल के अंतिम समय में स्थित है, यानी भव्य जीव अभी संसार के अंतिम समय पर स्थित है, उसके वेदनी की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य होती है। वे वेदनी आयु नाम गोत्र का एक निषेक अंतिम चल रहा है उसका उदय रूप, तो उसकी वो जघन्य काल अपेक्षा जघन्य वेदना कहेंगे हम। यहाँ वेद 14वां गुणस्थान का अंतिम समय, तब तक उसको भव्य कहेंगे, और सिद्ध होते उसको सिद्ध कहेंगे, अभी भव्य नहीं कहेंगे। हाँ, जैसे मराठी में ना जब एंगेजमेंट होती है तो वो लड़की को कहते सौभाग्य कांक्षिणी, और शादी होते ही क्या कहेंगे उसको? सौभाग्यवती कहेंगे, तब तक सौभाग्य कांक्षिणी लिखेंगे। कौन से जीवत? हाँ बराबर है। अवगाहना, ये कोई जीव लिखा ना अन्नदरस्य, तो कहते अवगाहना व संस्थान आदि कौन से कोई विशेषता नहीं होती। अवगाहना अलग अलग होती, हमने कल देखा था, अभी अंतिम समय लिया है, और उनके संस्थान भी अलग अलग हो सकते हैं। कितने कितने संस्थान हो सकते हैं? 6 संस्थान हो सकते हैं। ये संस्थान नाम कर्म का उदय कब मिटता है? हाँ बोलो। याद नहीं, 13वें के अंत में संस्थान नाम कर्म का उदय में बोलती हूँ। वो शरीर का संस्थान बना है उसकी कहाँ बात है। आपके पास है ना लिखा हुआ। ये सारे औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, संस्थान नाम कर्म, ये सब सुस्वर दुस्वर जो कुछ है वो तेरहवे में सब 29 की लिस्ट है ना, उदय की विच्छेति। हाँ, पंचेंद्रिय त्रस पर्याप्त वगैरह जो है ना, त्रस बादर पर्याप्त और पंचेंद्रिय, फिर मनुष्य गति वगैरह, वो सारे 14वें गुण स्थान में। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अवगाहना व संस्थान आदि कौन से, आदिक में क्या लेना, वो शरीर का वर्ण भी होगा जो कुछ है, हाँ वो सब लेना उसमें। कोई विशेषता नहीं होती, यह जतलाने के लिए सूत्र में अन्यतर पद का प्रयोग किया है। अब वो तीर्थंकर हो या सामान्य केवली हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भव्य सिद्धिक से अयोग केवली भट्टारक विवक्षित है लिखा ना यहाँ पर। देखो उनको भट्टारक कहते, अरिहंतों को भट्टारक कहते, भट्टारक का अर्थ ही अरिहंत। अभी उसकी शब्द कहीं से तैयार हुआ मुझे भी पता नहीं है, भट्टारक जैसे भगवान शब्द मुनियों के लिए आता है वैसे। उसके अंतिम समय में, चूंकि एक समय काल वाली एक स्थिति होती है, स्थिति यानी एक निषेक होता है जिसको हम कहते हैं, अतः भव्य सिद्धि के अंतिम समय में जघन्य स्वामित्व बतलाया गया है। अब शंका, अयोग केवली के द्विचरमाधिक समयों में जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं बतलाया जाता। नहीं, क्योंकि उक्त समयों में वेदनी की एक समय वाली स्थिति नहीं पाई जाती, तो कितने समय वाली पाई जाएगी, दो समय में, त्रिचरम में, तीन समय है? तब वदिरित्तम अजघन्ना, उससे भिन्न अजघन्य स्थिति वेदना होती है। उससे अर्थात जघन्य स्थिति वेदना से जो भिन्न वेदना है वह अजघन्य स्थिति वेदना है। यहाँ जैसे ज्ञानावरणीय के अजघन्य स्थानों की प्ररूपणा की गई है, वैसे ही वेदनीय के भी करना चाहिए। अभी उसमें जो कुछ डिफरेंस है वो बताएंगे। विशेष इतना है कि अयोग केवली के अंतिम समय से लेकर अयोग केवली के प्रथम समय तक निरंतर स्थानों की प्ररूपणा करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा, वहां क्षपक में तो हमने अंतर देखे थे। हाँ हाँ, एक 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 ही निशे खिरता है, वहां कोई स्थिति कांड घात नहीं होते। हाँ। फिर संयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित जीव के सांतर अजघन्य स्थान होता है, क्योंकि वहां अंतिम फाली अंतर्मुहूर्त प्रमाण देखी जाती है। देखो इसका अर्थ क्या है, देखो अंतिम समय में जो है संयोग केवली के अंतिम समय में, वहां क्या कहते हैं, सांतर अजघन्य स्थान होगा, बीच में अंतर पड़ेगा, क्योंकि वहां की अंतिम फाली अंतर्मुहूर्त वाली है। संयोग केवली के अंत में अंतिम फाली, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, आयु के बिना अन्य तीन कर्मों में स्थिति कांड घात हो रहे हैं वहां पर भी, तभी तो वो सबकी स्थिति समान होते 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 अयोगी के पहले समय में सबकी अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति होगी, फिर सबका एक एक निषेक गलता जाएगा। एक 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 अभी हम उल्टा देख रहे हैं ना, एक समय, दो समय, तीन समय, अयोगी के जितने समय हैं वहां तक तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण निरंतर स्थान है। उसके पहले क्या हुआ था, अंतिम स्थिति कांडक घात की अंतिम फाली गिर गई थी, तो उसके पहले वाला वो सांतर वाला स्थान होगा वहां पर, स्थिति कांडक घात की अंतिम फाली वाला, अंतिम फाली के बाद अंतर पड़ा हुआ, उसके पहले जो तुझ थोड़ा एक अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति अधिक लंबी हो जाएगी वहां पर। पुनः नीचे एक कम उत्कीर्ण काल प्रमाण निरंतर स्थानों के उत्पन्न होने पर, देखो संयोगी में वो सब स्थिति कांड घात हो रहे हैं, वेदनीय नाम गोत्र के स्थिति कांड घात हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखी थी उसकी स्थिति कितनी लंबी होती है, और फिर स्थिति कांड घात उसमें होते होते वो घटती चली आती है। आयु तो एक एक निषेक ही गलता है, कभी भी देखो तभी आयु में तो कोई, वो तो आयु में जब कहेंगे तो निरंतर स्थान उसमें घटा देंगे। कदली घात होता तो स्थिति कम बताएंगे एक जीव की अपेक्षा, अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा अगर हम देखना है तो एक जीव की अपेक्षा देखते देख नहीं रहे हो। कदली घात सबका तो होता नहीं है, तो अन्य अन्य जीवों में तो एक एक समय वाले अलग अलग स्थान देखे जाएंगे। ख्याल है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, गुणित कर्मांशिक और क्षपित कर्मांशिक में नंबर ऑफ परमाणु में वेरिएशन है। हाँ, वो स्थिति समान हो जाती है ना। हाँ, नाम गोत्र की अपनी अपनी अलग अलग रहती है ना। हाँ, तेरवे के अंत में। कौन सा अंतर? कांडक का प्रमाण जो ऐसा। हाँ, फिर भी वो अंतर्मूर्त प्रमाण ही होगा। हाँ, अंतर्मूर्त प्रमाण है, जो गैप है वो अंतर्मूर्त प्रमाण है। कांडक छोटा बड़ा भी अगर आप कहना चाहते हैं, फिर भी अंतर्मूर्त ही होगा कि कब उससे भी ज्यादा होगा। देखो यहाँ क्या लिखा, अंतिम फाली अंतर्मूर्त प्रमाण देखी जाती है। अंतिम फाली की बात है, यहाँ पर तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त वाले हो गए, क्योंकि स्थिति इतनी कम रहेगी ना। अभी कांडक कहाँ से बड़ा होगा? कांडक भी छोटे छोटे हो गया, ऐसा मुझे कहना है। समुद्घात में अलग होती है, समुद्घात में, समुद्घात की बात अलग है। समुद्घात में एक एक समय में वो एक एक कांडक होता है, एक एक समय में। समुद्घात की बात नहीं यहाँ ली है, ये अंतिम कांडक की बात ली है। समुद्घात के बाद एक अंतर्मूर्त शेष है वहां पर। समुद्घात कौन करता है? बहुत लंबी जिसकी स्थिति बाकी वो करता है। सबके नहीं होता समुद्घात। और समुद्घात के बाद भी एक अंतर्मूर्त के बाद 13वां गुणस्थान समाप्त होकर 14वां शुरू हो जाता है। देखो उसके अभी अंतिम कांडक के पहले क्या होगा, फिर उसके पहले, फिर उत्कीर्ण काल में निरंतर एक एक समय। देखो पुनः नीचे एक कम उत्कीर्ण काल प्रमाण निरंतर स्थानों के उत्पन्न होने कर होने पर एक बार सांतर स्थान उत्पन्न होता है। एक बार हुआ, एक बार, क्योंकि वहाँ अंतर्मूर्त स्थानांतर देखा जाता है। स्थान का अंतर जो अंतर्मूर्त प्रमाण है। इस प्रकार लोकपूर्ण समुद्घात करके स्थित सहयोगी केवली तक ले जाना चाहिए, लोकपूर्ण तक, क्योंकि बाद में वो कांडक नहीं होता है। ये जो दंड कपाट प्रतर और लोकपूर्ण तक, वो एक एक समय में एक एक बड़ा कांडक होता है। तो यहाँ लोकपूर्ण तक लाया, पश्चात ज्यादा होते है अंतर्मूर्त काल, उसमें अंतर्मूर्त के बहुत सारे कांडक हो गए बाद में भी। अब कहते हैं प्रतर समुद्घात गत केवली में अन्य अपुनरुक्त सांतर स्थान होता है। सांतर है ना, देखो एक एक समय में एक एक बड़ा कांडक होता है। तो लोक पूरण में जितना था स्थिति थी, अब प्रतर में तो बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। हाँ, तो उसको कहते हैं अपुनरुक्त सांतर स्थान होता है, क्योंकि लोक पूरण समुद्घातगत केवली के स्थिति सत्व से प्रतर समुद्घातगत केवली का स्थिति सत्व असंख्यात गुणा पाया जाता है। असंख्यात गुणा यानी एक ही समय में असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति कर दी उसने, यानी असंख्यात बहुभाग वाला एक कांडक हुआ है वहां पर। पहली जितनी स्थिति थी प्रतर के समय में, लोक पूरण के समय में स्थिति कितनी, हमेशा तो कांडक छोटे, कुछ स्थिति से भी कुछ भाग हुए होते। अभी यहाँ जितनी स्थिति है उसके असंख्यात भाग करो तो असंख्यात भाग बाकी रहता है और बहुभाग कट हो जाता है। वापस नहीं, लोक पूरण तक ही कांडक घात होता है, वापस हाँ कांडक घात नहीं है। पश्चात कपाट समुद्घात गत, हम उल्टा उल्टा देख रहे हैं ना, कपाट समुद्घात गत केवली में अन्य शांतर और पुनरुक्त स्थान होता है, फिर दोबारा अंतर पड़ेगा, क्योंकि प्रतरगत केवली के स्थिति सत्व से कपाटगत केवली का स्थिति सत्व असंख्यात गुणा पाया जाता है। देखो उस समय भी एक समय में उसने असंख्यात बहुभाग वहां भी घटाया। पश्चात दंड समुद्घात गत केवली में अन्य शांतर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि कपाटगत समुद्घात केवली के स्थिति सत्व से दंड समुद्घात गत केवली का स्थिति सत्व असंख्यात गुणा पाया जाता है। फिर दंड समुद्घात के अभिमुख हुए केवली में, यानी दंड के एक समय पहले वाली बात, अन्य शांतर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि दंड समुद्घात गत केवली के स्थिति सत्व से दंड समुद्घात करते ही उसने फिर असंख्यात वा भाग कर दिया ना। अभी उसकी बात बताएंगे ना, वो जो अभी तो केवली की बात, समुद्घात वाले की बात कर रहे हैं भैया, क्योंकि दंड समुद्घात गत केवली के स्थिति सत्व से उसके अभिमुख हुए केवली में असंख्यात गुणा स्थिति सत्व देखा जाता है। यहां से लेकर नीचे क्षीण कषाय के अंतिम समय तक निरंतर स्थान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इस बीच में स्थिति कांडक का अभाव है। देखो क्या कहना चाहते हैं, क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थिति कांडक जो कुछ वहां पर होगे उतने ही होगे, फिर संयोग केवली के पूरे में नहीं हुआ था तो कहां पर हुए, अंत में, जहां वो कुछ वेरिएशन होगे स्थिति में तब। तो जिसने समुद्घात किया है ऐसे केवली लिए और उसके बाद भी स्थिति आयु और उसकी स्थिति समान होने के लिए जितना आवश्यक है अंतिम अंतर मुहूर्त में, वहां उतने स्थिति कांडक घात हो जाते हैं। देखो यहां से लेकर नीचे क्षीण कषाय के अंतिम समय तक निरंतर स्थान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इस बीच में स्थिति कांडक का अभाव है। इसके नीचे निरंतर और शांतर क्रम से ज्ञानावरणी के विधान के अनुसार अजघन्य स्थानों की प्ररूपणा करना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है। अब वहां पर तो स्थिति कांडक घात होगी श्रेणी में, समुद्घात में अलग अलग स्थिति वालों लिए, फिर भी वो कुछ बीच में गैप है वो बताने के लिए शांतर स्थान बताए। अभी हर एक के वेरिएशन उसमें नहीं बताए उन्होंने, गैप के बाद अंत लोक पुराण के बाद वो समान होगा सबका अंतर्मुख, फिर भी उसमें भी स्थिति कांडक है बाद में भी, अभी हमने देखे थे ना। हाँ उस स्थानों की संख्या कितनी है वो नहीं बताई उन्होंने, अलग अलग जीवों की अपेक्षा जो कुछ होगी। ये भी नहीं समझे ना, वो कहते भाभी को जल्दी समझ में आता है, दिनेश भाई को कुछ कुछ नहीं समझ। ये तो बोलने की पद्धति अलग करती है ना यार की। हाँ अभी घर वालों को पूछना पड़ेगा कैसे बोलते हैं क्या. चलो देखो इसके नीचे यानी वो बीच में क्षीण कषाय के अंतिम समय से जो नीचे तक आएंगे ना वहां तो सिद्धिकांड गाथ होते अपूर्व करण से लेकर आगे तो वहां सांतर स्थान भी बीच बीच में होगे जो कुछ यथा योग्य जहां तक लेना है. इसके नीचे निरंतर और सांतर क्रम से ज्ञानावरणी के विध्यान के ये तो हो गया था अपना. अब आगे का सूत्र 21 नंबर एवं आवो नामा गोदानम. इसी प्रकार आयु नाम और गोत्र कर्मों के जघन्य एवं अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा है. अभी वो विशेष बताएंगे उसमें आयु में होगा तो है ना होना ही चाहिए क्यों उसमें तो कुछ बीच में अंतर नहीं करेंगे. जैसे वेदनीय कर्म के जघन्य व अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा की गई है वैसे ही इन तीनों कर्मों के जघन्य व अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए. जघन्य वो एक समय वाला वो जघन्य कहेंगे फिर एक एक समय से बढ़ते हुए अजघन्य कहेंगे क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है ऐसा कहकर फिर विशेष बता रहे. विशेष इतना है कि अभी आयु कर्म की जो स्पेशलिटी उसको बताएंगे. आयु कर्म के अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा में जघन्य में तो कोई विशेषता नहीं है एक समय वाली आयु है कब अयोगी के अंतिम समय में. अजघन्य में क्या है तो अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा में जो कुछ विशेषता है उसे कहते हैं. यथा भव्य सिद्धिक रहने के द्विचरम समय में एक अजघन्य स्थान होता है पश्चात त्रिचरम समय में द्वितीय अजघन्य स्थान होता है चतुष्चरम समय में तृतीय अजघन्य स्थान होता है. यहाँ दुगुनी वृद्धि होती है. चतुष्चरम समय में तृतीय अजघन्य स्थान होता है. यहाँ दुगुनी वृद्धि होती है यहाँ से संख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ होकर तब तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट संख्यात गुणकार स्वरूप से दो समय प्रविष्ट नहीं हो जाते. पश्चात इसके ऊपर एक समय की वृद्धि होने पर संख्यात गुण वृद्धि ही रहती है क्योंकि वहां अर्ध रूप से अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण गुणकार पाया जाता है. तत्पश्चात उससे अनंतर अधस्तन समय में असंख्यात गुण वृद्धि होती है क्योंकि वहां दो समयों का जघन्य परिता संख्यात गुणकार पाया जाता है. इसके आगे एक समय अधिक छह मास स्थिति तक असंख्यात गुण वृद्धि के द्वारा उतारना चाहिए. छह मास से एक समय अधिक हुआ तो असंख्यात गुण वृद्धि का पश्चात आयु बंध से रहित होकर स्थित सर्वार्थ सिद्धिस्थ देव की एक समय अधिक छह मासों से कम 33 सागरोपम प्रमाण आयु को गलाकर स्थित हुए जीव की आयु इस आयु के सदृश होती है. क्या कहना चाहते हैं उन्होंने आयु के एक एक समय बढ़ते 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 6 महीने तक लाया. अभी कहते सर्वार्थ सिद्धि की आयु कब बनती है तो 6 महीने पहले बनती है. तो उसमें 33 सागर की आयु गलाकर आया हुआ जीव है. अभी अगली आयु बांधेगा तो वो आयु की स्थिति गिनेंगे ना उसको. अभी जिसने आयु का बंध तो नहीं किया है एक समय पहले वाला लिया है तो उसकी कितनी आयु है 6 महीने और एक समय. आगे के समय में वो आगे वाली मनुष्य आयु बांधेगा तो वहां आयु की स्थिति जितनी वो बांधेगा उसमें प्लस आबादा 6 महीने का गिनकर उतनी गिनेंगे. अभी जिसने आयु नहीं बांधी है ऐसा वो जीव लिया है 6 महीने वाला. पूर्वोक्त जीव को छोड़कर और इसे ग्रहण करके एक एक समय की अधिकता से अधिकता के क्रम से निरंतर बढ़ाकर क्या कहते हैं, अभी ये जीव लिया कौन सा, सर्वार सिद्धि का जीव, हमने यहाँ एक एक समय बढ़ाते हुए 6 महीने तक का लिया, क्योंकि उसने तो आयुबंध का सवाल ही नहीं था ना, चरम शरीर ही था वो। अब उसके बाद सर्वार सिद्धिक वाला कौन सा लिया, 6 महीने और एक समय अधिक, वहाँ उसने आयु का बंध नहीं किया था, तो कितनी आयु गिनेंगे, सर्वार सिद्धि के जो रिमेनिंग आयु उसको गिनेंगे, तो 6 महीने एक समय, उसके पहले 6 महीने 2 समय, उसके पहले 6 महीने 3 समय, ऐसे कितना हो सकता है, सर्वार सिद्धि की जितनी आयु है उतना 33 सागर तक, उल्टा जा रहे हैं ना हम। तो निरंतर बढ़ाकर सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुए देव की उत्पत्ति की प्रथम समय तक ले जाना चाहिए, तो 33 सागर हुआ। पुनः 33 सागरोपण आयु को बांधकर मनुष्य भव के अंतिम समय में स्थित संयत के अन्य अपनुरक्त स्थान होता है। अभी हमको उत्कृष्ट तक बढ़ाना है, तो ये 33 सागर और 33 सागर के आयु बांधे हुए जो मुनिराज है, उनके आयु के मनुष्य आयु के अंतिम समय में स्थित है, तो उनके पास आयु की स्थिति कितनी पड़ी है, 33 सागर और एक समय, उतने काल के अंदर पड़ा है ना। पीछे उल्टा जाओ, कहाँ तक जा सकते हैं, पूर्व कोटि की त्रिभाग तक मैक्सिमम, हाँ उल्टा ले रहे हैं ना, जहां से आयु बंध का पहला समय लेना वहां पर, अभी उन्होंने बताया नहीं, हम पढ़ेंगे। मनुष्य भोग के द्विचरम समय में स्थित संयत के अन्य अपनुरुक्त स्थान होता है, वो न नहीं दिख रहा है। इस प्रकार ये आया, देखो पूर्व कोटि त्रिभाग के प्रथम समय में स्थित संयत तक असंख्यात गुण वृद्धि के द्वारा उतारना चाहिए। असंख्यात गुण वृद्धि क्योंकि हमने एक समय 2 समय से शुरू किया था, 2 समय से लिया था एक्चुअली, क्योंकि एक समय तो जघन्य है और हमको अजघन्य स्थान देखने हैं, तो 4 समय हुए तभी हमने दुगुनी कहा थे, इस तरह से हम उल्टा आए ना, तो इसको असंख्यात गुण वृद्धि कहेंगे। यहाँ जीव समुदाहार को जानकर कहना चाहिए, यानी उसमें जीवों की संख्या जो जानकर यथा योग्य उसको समझना, जो पहले आई थी उत्कृष्ट के प्रकरण में। आयु बंधने का जो अंतर्मूर्त है, एक समय बांधना शुरू कर दिया है, नहीं नहीं आप नहीं समझे, एक समय को आयु बांधता ऐसा नहीं लिया उन्होंने। देखो देखो, यहाँ हम मान लेते हैं ये अंतर्मूर्त के इतने समय है, यहाँ उसने आयु बांधी किसकी, देव की, वो हम लाल में दिखाएंगे। ये 33 सागर की आयु है, 33 सागर को हमने घटा कर दिखाया ना अभी। अब आयु बंध के अंतिम समय में या मनुष्य या आयु बंध इतना ही है, और आयु बंध के बाद उसका इतना मनुष्य आयु है, बराबर है ना। यहाँ ये सर्वार सिद्धि की आयु बांध रहा है, पूर्व कोटि के त्रिभाग की बात है, उसके बाद उसकी आयु कितनी शेष है, 1/3 पूर्व कोटि बाकी है, और बाद में 33 सागर है, तो 33 सागर के बाद अंतिम समय वाला, तो 33 सागर एक समय, 33 सागर 2 समय, 33 सागर 3 समय, ऐसे 33 सागर और ये अंतर्मूर जो आयु बंध का उसको अभी शुरू नहीं मत करो, वहाँ तक आए, फिर उसमें भी अंतिम समय आयु बंध का अंतिम समय, तो उतनी आयु अभी उसकी उसका काल बाकी है, 2 समय 3 समय 4 समय। आयु बंध के पहले समय में कितनी आयु है, 1/3 पूर्व कोटि और पूरी 33 सागर, यानी वो एक समय में बांध रहा है ऐसी बात नहीं है, बांधना शुरू किया है उसने, तो वहां आयु की वेदना कितने काल की पड़ी है, पहले ही समय से उसने 33 सागर बांधना शुरू कर दिया है, वो बांधना उसका लगातार चलेगा अंतर्मूर्त, पर यहां से उसकी स्थिति निश्चित हो गई ना 33 सागर की, ये बात बताना चाहते हैं। अब आगे का सूत्र, कुछ शंका है, सामित्तेन जहन्यपदे मोहनीय वेना कालदो जहन्याकस्य आयु की वेदनीय आयु नाम गोत्र की बात हो गई, अब मोहनीय की बता रहे। मोहनीय को अलग क्यों निकाला? दसवें के अंत में उसकी होगी, इसलिए उसको अलग निकाला। आघाती के तो चौदवा का अंत समझ लिया, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के लिए बारवा का अंत समझ लिया। मोहनीय की कहां पर लेना? दसवें के अंत समय में। तो स्वामित्व से जघन्य पद में मोहनीय कर्म की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य किसके होती है? वो क करना, के किसक हुआ है, किसके होती है? वहां कहते हैं यह सूत्र सुगम है, यानी प्रश्न समझ में आवे ऐसा है। अन्न दरस्य खवगस्य चरिम समय सकसायस्य। सकषाय वाला कौन है? चरिम समय वाला सकषाय वाला, हाँ, दसवें गुण स्थान। खवगस्य पहले बता दिया, शपकस्य। चरिम समय सकसायस्य मोहनीय वेणा कालदो जहन्ना। जो कोई क्षपक, जो कोई कहने से वो कोई भी ऐसा लिया, जो कोई क्षपक सकषाय अवस्था के अंतिम समय में स्थित है, जिसको हम कहते हैं सांप्रायिक, यानी कषाय वाला, सकषाय की अंतिम अवस्था, जहां तक सूक्ष्म लोभ है ना, यानी सूक्ष्म सांप्रायिक का दसमो गुण स्थान, तो उसके लिए भी खाली दसमा गुण स्थान नहीं, उसके पहले क्षपक लगाया। क्यों? क्योंकि उपशमक के तो सत्ता में पड़ा है सारा, भले उदय रूप नहीं हो, परंतु सत्ता में उसकी जो कुछ यथा योग्य अंत कोड़ा कोड़ी जितनी स्थिति पड़ी है अंदर में, इसलिए उसको उपशमक को नहीं लिया, क्षपक को लिया। तो जो कोई क्षपक सकषाय अवस्था के अंतिम समय में स्थित है, उसके मोहनीय कर्म की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य होती है। तो जघन्य में कितनी होगी ज्योत्नाबेन, बोलो आप? कम से कम काल पाया जाएगा अंतिम समय में, कितना होगा? एक समय, बहुत अच्छा। आपको तो आता है सब। तब व्यतिरिक्तम अजघन्ना, उससे भिन्न अजघन्य वेदना होती है, उससे भिन्न अभी एक 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 समय से बढ़ते हुए बताएंगे। हाँ हाँ, आपका प्रश्न है, ग्यारहवें गुणस्थान में जीव पूर्ण वितरागता है, अरिहंत जैसे वितराग है, तो क्या सत्ता में कर्म है फिर भी उसके वितरागता होती है? हाँ, क्योंकि जो जीव का जो कुछ निमित्त जीव में बनता है वो तो उदय रूप कर्मों का बनता है। यहाँ कर्म पूर्ण रूप से उपशमित है, उदय में नहीं आ रहे है, अनुदय है उसका, उपशमित है। उपशमित है ना, क्या सत्ता में है, उदय नहीं हो रहा है, तो वहां उदय भी नहीं है, और उदय नहीं हो रहा है इसलिए जीव वितराग, ऐसा नहीं। जीव स्वयं अपने स्वयं की योग्यता से पूर्ण वितराग हुआ है, तो यहां वितरागता है, तो वहां सामने कर्मों का उदय भी नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं उपशमित हुए।
देखो, जो सत्ता में कर्म होता है वो कुछ अपने को कार्यकारी नहीं, ना फल देता है ना तकलीफ देता है। पार्श्वनाथ मुनि जब खड़े थे तप में बैठे थे, खड़े थे, जो भी आप कहो, उस समय तीर्थंकर गोत्र था कि नहीं उनके साथ, तो क्या फायदा हुआ? यही बताते कि सत्ता वाला कुछ काम नहीं करेगा, तो इसलिए वो पूर्ण वितराग, ग्यारहवा गुणस्थान वाला पूर्ण वितराग है।
देखो ये सूत्र के नीचे लिखा है उसको। अरे हाँ, मैं अभी उसी को पढ़ने जा रही थी। सूत्र में क्षपक 23 के नीचे वाला पैराग्राफ, सूत्र में क्षपक पद के निर्देश का प्रयोजन उपशामक का प्रतिषेध करना है। एक्चुअली मैं वही पढ़ने जाने पर मैंने नीचे वाला सूत्र भी पढ़ लिया, ठीक है। सकषाय पद के निर्देश का फल क्षीण कषाय आदिकों का प्रतिषेध करना है, क्योंकि क्षीण कषाय है ना, वो अकषाय है, क्षीण कषाय, कषाय को क्षय करने वाला है। द्विचरम सकषाई आदिकों का प्रतिषेध करने के लिए सकषाई को चरम समय विशेषण से विशेषित किया गया है। द्विचरम कहते तो दो समय वाली स्थिति रहेगी, तो उसको जघन्य नहीं कहेंगे हम, अभिप्राय यह है कि सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान के उखी के बाद थोड़ा गैप रखना है। सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित जीव के मोहनीय के वेदना काल की अपेक्षा जघन्य होती है। ये आगे का पढ़ा हमने, तब वैदीरितम अजघन्ना, उससे भिन्न अजघन्य वेदना होती है। इस सूत्र के अर्थ की प्ररूपणा हाँ, ज्ञानावरण के अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा करने वाले सूत्र के समान करना चाहिए। इस प्रकार स्थान संख्या एवं जीव समुदाहार से गर्भित स्वामित्व अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। पहले हमने पद मीमांसा देखा, उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य आदि हमने 13 देखे थे पद, उसमें भी कौन से में क्या कॉम्बिनेशन परमिटेशन सब बता के उन्होंने बता दिया। और उसके बाद स्वामित्व की प्ररूपणा की, तो उसमें सभी कर्मों के उत्कृष्ट और जघन्य ऐसे दोनों ही पदों की अपेक्षा स्वामित्व बता दिया उन्होंने। काल की अपेक्षा बात चल रही ना यहाँ पर। अब तीन हमने देखे थे अधिकार, तीसरा है अल्प बहुत्व, तो वहां बताएंगे। अप्पा बहुएत्ति तथ इमानी तिन्नी अनुगत दाराणी जहन्न पदे उक्कस पदे जहन्नुक्कस पदे। अब अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार का अधिकार है, उसमें ये तीन अनुयोग द्वार है जघन्य पद में, यानी जघन्य पद में अल्प बहुत्व, उत्कृष्ट पद में यानी उत्कृष्ट पद में अल्प बहुत्व, और जघन्य उत्कृष्ट पद में लिखा है ना, पद में अल्प बहुत्व, ऐसा पूरा समझना। शंका, इस अधिकार में तीन ही अनुयोग द्वार है, यह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, चूंकि जघन्य व उत्कृष्ट पद में एक व दो के संयोग से होने वाले तीन भंगों को छोड़कर इनसे अधिक भंगों की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, यानी जघन्य में क्या आप अल्प बहुत्व करेंगे ना उसमें, अतः इसी से जाना जाता है कि उसमें तीन ही अनुयोग द्वार है। देखो क्या कहते हैं, एक है जघन्य पद, एक है उत्कृष्ट पद, अब इसके भंग बनाओ, तो एक जघन्य एक उत्कृष्ट दो लिखे हा? अब दोनों का एक संयोग करो, तो जघन्य उत्कृष्ट ये तीसरा भंग हुआ, और भंग बनाओ उसके, नहीं हो सकते, तीन ही भंग हो सकते, एक एक संयोगी और द्विसंयोगी, दो ही चीजें है ना, ए और बी दो ही चीजें होगी तो उसमें भंग तीन ही होंगे, और ए बी सी तीन चीजें होगी तो भंग कितने होंगे, बोलो बे, हाँ बोलो, टोटल हमको चाहिए 7। अभी तक सप्तभंगी, हम ये जैनी होकर भी सप्तभंगी की बात भूल गए, देखो ये कितने भंग, किसी भी चीज हम बेसिक थी, दो तीन है ना, 2 × 2 × 2 -1, जब दो थे तो क्या किया था, 2 × 2 - 1, तीन ही भंग हो गए। अब ये ए बी सी डी लेंगे तो 4 बार 2 को आपस में गुणा करना, उसमें से 1 माइनस करना, 15 हो गए भंग। तो सप्तभंगी जब हम कहते हैं तो तीन बेसिक चीजें ही लेते हैं, अस्थि नास्ति और अवक्तव्य, और फिर उसमें अस्थि नास्ति अवक्तव्य, फिर वो सारे उसमें 7 ही भंग हो गए, अधिक हो गए ही नहीं। यहाँ इसलिए लिखते हैं कि दो बातें ना, एक उत्कृष्ट है एक जघन्य है, अभी उत्कृष्ट को एक बार रखो, जघन्य को एक बार रखो, और दोनों को मिलकर एक बार रखो, तो तीन ही भंग हो सकते हैं, इनसे अधिक भंगों की उत्पत्ति नहीं देखी जाती, अतः इसी से जाना जाता है कि उसमें तीन ही अनुयोग द्वार है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई,